पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही रुद्र के साथ नहीं रहना चाहती थी। इस अध्याय में रूही को रुद्र की शर्तों को मानने के लिए मजबूर किया जाता है। रूही को कॉलेज जाने की अनुमति मिलती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। रूही सिंघानिया विला जाने के लिए तैयार हो जाती है। रूही रुद्र को मन ही मन बुरा भला कहती है और उसकी बातों पर सवाल उठाती है। रुद्र रूही को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे चेतावनी देता है। रूही बाथरूम में चली जाती है और भगवान से मदद मांगती है। वे दिशा के पास जाने का फैसला करती है और कपड़े देखती है जो रुद्र ने उसे पहनने को कहा था। दिशा को पता चलता है कि रुद्र ने अनाथाश्रम की जमीन खरीदी है और उसे लगता है कि रूही रुद्र के पास है। रुद्र रूही को बाहर आने के लिए कहता है और जब वो बाहर आती है तो वो केवल पेटीकोट और ब्लाउज में होती है। रुद्र रूही को देखता है और कहता है कि उसे उससे छिपने की जरूरत नहीं है। रूही कहती है कि उसे साड़ी पहननी नहीं आती। अब आगे चैप्टर 83। अब आगे मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, आज के पहले मैंने इसे कभी नहीं पहना। रूही की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ जाती है। रूही जैसे ही बोलती है कि उसे साड़ी पहनने नहीं आता, इस बात की सुन रुद्र के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ जाती है और वे रूही को देख बोला, कोई बात नहीं रू, मैं हूं ना, मैं तुम्हें साड़ी पहनना सिखा दूंगा। इतना बोल वे साड़ी को जमीन से उठा रूही की तरफ पढ़ने लगता है। वही रूही जैसे ही ये सुनती है कि रुद्र उसे साड़ी पहनाएगा, इस बात को सुनकर पहले तो वे शॉक हो जाती है कि क्या इस शैतान को लोगों को डराने और धमकाने के अलावा लोगों को साड़ी पहनाने भी आता है। लेकिन दूसरे ही पल रुद्र को अपने करीब बढ़ता देख वे अपनी हकलाती हुई आवाज में कहती हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको मुझे साड़ी पहनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी लेडी सर्वेंट को बुला दीजिए, वे मेरी मदद कर देंगी साड़ी पहनाने में। रूही की बात सुनकर रुद्र रूही के करीब आ उसके चेहरे पर हल्का सा झुक उसकी हल्की ग्रीन आंखों में अपनी नीली आंखों से देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, रूह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई नौकरानी तुम्हें इस तरह देखे और तुम्हें कहीं भी टच करे। इतना बोल वे घुटनों के बल बैठ रूही की साड़ी का एक कोना पकड़ अपने हाथों को बेहद सेंशुअल तरीके से रूही के पेटीकोट के अंदर डाल देता है। रुद्र का बस इतना करना ही था कि रूही, जो रुद्र की बातों को सुनकर पहले ही हैरान थी, रुद्र के ऐसा करने से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका शरीर अलग तरह से रिएक्ट करने लगता है, जिसके रूही खुद को संभालने के लिए रुद्र के दोनों मजबूत कंधों को बेहद मजबूती से पकड़ लेती है। वहीं रुद्र रूही के हाथों की मजबूत पकड़ जब अपने कंधों पर महसूस करता है तो समझ जाता है कि रूही इस समय क्या फील कर रही है। साथ ही साथ वे खुश भी था कि उसकी रूह उसकी छुअन से इस कदर पिघल रही है। रुद्र अपने हाथों से रूही के पेट और कमर को बेहद इंटेंसली सहरा रहा था, जिसके रूही को अपने शरीर में एक अलग का करंट महसूस हो रहा था जो आज के पहले अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। जब रूही रुद्र की छुअन को और बर्दाश्त नहीं कर पाती तो वे रुद्र को देख अपनी धीमी मगर प्यारी आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। रूही की बात सुनकर रुद्र काफी इनोसेंट बनते हुए बोला, रूह मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बस साड़ी पहना रहा हूँ। रुद्र की बात सुनकर रूही रुद्र से कुछ भी नहीं बोलती, बस अपना चेहरा फेर लेती है, क्योंकि उसे अब पता नहीं क्यों रोना आ रहा था। वहीं रुद्र जब रूही का रोने जैसा चेहरा देखता है तो वे उसे और ना परेशान करते हुए अब अच्छे से साड़ी पहनाने लगता है। लेकिन फिर भी उसके हाथ बार बार रूही के शरीर से टच हो रहे थे, जिसके रूही की पकड़ रुद्र के कंधों पर उतनी ही टाइट होती जा रही थी। पता नहीं ये कैसा एहसास था, अच्छा या बुरा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रुद्र की छुअन से उसकी सांसें भी तेज होती जा रही थीं। वहीं रुद्र रूही की साड़ी को उसके कमर पर अच्छे से लपेट उसके पेट पर अपने होंठ रख उसे किस कर लेता है। रुद्र का इतना करना ही था कि रूही तुरंत रुद्र से दूर हो रुद्र की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। इस समय उसने अपनी आंखों को बेहद मजबूती से बंद करके रखा हुआ था, साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वहीं रुद्र जब रूही को खुद से दूर जाते हुए देखता है तो गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है, क्योंकि वे रूही को जितना भी प्यार से ट्रिक कर ले मगर उसकी रूह है कि कुछ समझने का नाम ही नहीं लेती है। वे खड़ा हो रूही के पास आता है और रूही को रोता हुआ देख गुस्से में कहता है, रूह तुम रो क्यों रही हो। रुद्र की बात का रूही कोई भी जवाब नहीं देती, जिसे देख रुद्र रूही के जबड़े को पकड़ उसके चेहरे को ऊपर करते हुए कहता है, रूह जो हमारे बीच हो रहा है वे सब नॉर्मल है, अभी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तुम इस तरह रोना शुरू कर दो। तुम्हें अब समझना होगा कि अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं रह गया है। अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हें अब इसी तरह से प्यार करूंगा, बल्कि इसके भी ज्यादा गहराई से प्यार करूंगा। अब अगर तुम्हारा रोना बंद नहीं हुआ तो मैं अभी तुम्हें किस कर लूंगा और एक घंटे तक तुम्हें आज़ाद नहीं करूंगा। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। इतना बोल वे वापस से रूही को साड़ी पहनाने लगता है। वहीं रुद्र की बात सुनकर रूही अब शांत हो जाती है मगर कुछ बोलती नहीं। रुद्र रूही को साड़ी पहनाने के बाद उसे नेकलेस और मंगलसूत्र पहनाता है। फिर मांग में सिंदूर भरकर बोला, रो आगे से ये मंगलसूत्र मुझे तुम्हारे गले से उतरता हुआ नजर नहीं आना चाहिए और तुम्हारी मांग में ये मेरे नाम का सिंदूर हमेशा रहना चाहिए। इतना बोल वे रूही के माथे को किस करता है और रूही को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। सच में उसकी रूह इस लाल कलर की साड़ी में बिल्कुल कयामत लग रही थी। रूही इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि रुद्र का उस पर से नजरें हटाना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वे रूही से अपनी नजरें हटा उसके हाथ को पकड़ कमरे से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही दिशा बाहर जाने को होती है उसका पैर कारपेट में फंस जाता है और गिरने के डर से उसकी चीख निकल जाती है, मगर वे गिर पाती उसके पहले ही देवांश दिशा की कमर को पकड़ उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। वहीं दिशा को जब ये महसूस होता है कि वे गिरी नहीं है बल्कि किसी ने उसे पकड़ रखा है तो वे अपनी आंखें खोल देखती है और अपने सामने देवांश को देख वे चैन की सांस लेती है। फिर देवांश से दूर हो वे देवांश को देख बोली, थैंक यू सर। दिशा की बात सुनकर देवांश बोला, मोस्ट वेलकम मिस दिशा, आगे से ध्यान रखिएगा। दिशा की बात सुनकर दिशा अपना सर हाँ में हिला तुरंत कमरे में निकल नीचे चली जाती है। दिशा को जाता देख देवांश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। दिशा और देवांश जब नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दूसरी तरफ से सीढ़ियों से रुद्र रूही का हाथ पकड़ नीचे आ रहा था।
वहीं दिशा की नज़र जैसे ही रूही के कपड़ों और उसके चेहरे पर जाती है उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी नजर आने लगता है।